रातें क्लास चल रहा था अट्ठाईस अक्टूबर 1966 चौथी पेज के आगे बात चल रही थी, जितना याद करेंगे इतनी सजा कम मिलेगी और पद भी ऊंचा होगा। बस दो बातें याद कर लेंगे, तीसरी कोई बात बाबा थोड़े ही बताते हैं। कौन कौन सी बातें बताई? जितनी याद करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। याद से ऊंचा पद मिलता है या सेवा से ऊंचा पद मिलता है? है याद से मिलता है, सेवा करने की तो दरकार नहीं है। जो सेवा करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? बाबा की सेवा करेंगे ना, ईश्वर की सेवा करेंगे ना। तो जिसकी सेवा करेंगे उसकी याद नहीं रहेगी। तो ज्यादा सेवा जो करते हैं उनको ज्यादा ऊंचा पद मिलता है, क्योंकि बाबा याद किसको करते हैं? है सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। और जिनको बाप खुद याद करेगा तो उनकी याद बहुत तीखी होगी या नहीं होगी? है उनकी तो बहुत याद तीखी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से कनेक्शन जोड़े, एक तार का तार जोड़े और दूसरी तार से तार न जुड़े तो याद तो उतनी अच्छी नहीं जुड़ेगी ना। इसका नाम ही है योग। तो पहली बात है याद। अगर अभिविचारी याद है, एक याद है, माम एकम याद करो, ऐसी पक्की याद है तो सारे विश्व की वाइब्रेशन से सेवा होती है तो जरूर ऊंचा पद मिलेगा। तो दो बातें बुद्धि में रहे, याद और याद में भी सेवा भरी हुई है लेकिन याद अभी भी चारी हो, दूसरे की याद न हो तो पद भी ऊंचा मिलेगा, याद के साथ साथ सेवा हो ही जाएगी। तो सिर्फ बताते हैं याद करो अच्छी तरह से। ये याद का फुरना रखो, ओना रखो। अभी क्या करें? याद करते हैं तो माया का तूफान आ जाता है। फिर भी हमको कैसा भी करके याद तो जरूर करना है। ये माया हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन हमको बिघन डालती है। अच्छा, हम फिर भी बाबा की फलक से फटक फटक करके भी याद तो करता हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ये जो माया के तूफान पड़े हैं, माया तूफान लाएगी, तुमको गंद में डालेगी, कचरे में डालेगी, क्रोध के बसीभूत कर देगी, परंतु तुम क्रोध ब्रोध कुछ नहीं करना। बाप कहते हैं ना, कभी कभी सन्यासी दृष्टांत देते हैं, दो पहाड़ियां बैठ करके लड़ती हैं, तो एक जाती है गुरु के पास, कहती है ये मेरे से लड़ती है, तो बोलता है लड़ती है, अच्छा मैं तुमको ये ताबीज देता हूँ, जब वो तुमसे लड़े ज्यादा बातें करे तो तुम ये ताबीज डाल देना। फिर तुम बात ही नहीं कर सकेंगी, तो वो भी बड़बड़ के चुप हो जाएगी। अभी वो तो एक दृष्टांत हुआ, चलिए खरियों का दृष्टांत। पर बाप फिर भी कहते हैं, जब भी कोई क्रोध करे ना, तुम शांत होकर बैठ जाओ या हर्षित होकर बैठ जाओ, क्या कोई क्रोध करे और तुम हर्षित हो जाओ, मुस्करा दो उसके सामने, तो क्या होगा? वो और गुस्से में आएगा या शांत हो जाएगा? हैं? तो बाबा बोलते हैं भले गुस्से में आ जाए, गुस्से में आकर के एक धक से बहुत कुछ बोल जावे, फलाने को मार कर चला जावे, चलो, क्योंकि अक्सर करके स्त्री पुरुषों का झगड़ा चलता है विकार के लिए, क्यों है? दोनों के बीच में ज्यादा विकारी कौन होता है? है? कौन होता है? पुरुष भिखारी होता है, वो पहल करता है और बार बार पहल करता है, स्त्रियां तो इतनी पहल करने वाली नहीं होती है, उनमें तो लज्जा रहती है, तो फिर क्रोध किसको आएगा? बाबा कहते हैं कामेशु क्रोधेशु हो जाती है, काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं? गुस्से में आ जाते हैं। तो बाबा तो ऐसी ऐसी युक्तियां बताते हैं, कोई हर्जा थोड़े ही है। अच्छा तुमको मारा, अच्छा पढ़ा, क्या पढ़ा? अरे हाथ पढ़ा, थप्पड़ पढ़ा, शिव बाबा, हाय शिव बाबा, राम नाम नहीं लेना, क्या कहो? हाय शिव बाबा, अंत मते सुगते। तुम शिव बाबा को ही याद करती रहो, एकदम तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बाबा के पास चली जाएगी। तो देखो, ये तो अभी हिम्मत की बात है ना, कुछ भी भूलना तो नहीं चाहिए ना, कोई को भी कुछ भी नहीं। हाय शिव बाबा, ये हमको मारते हैं बिख के लिए। आजकल की दुनिया में तो मारते ही है बिख के लिए, समझा ना? बाकी तो बाहर में जो झगड़े बगड़े रहते हैं वो तो इनका संभाल करना है, बहुत ही लड़ते हैं। आदमियों को जमीन की टुकड़ी के लिए भी एक दो को मार देते हैं ना, काय की टुकड़ी, जमीन माने धरनी। बाबा बेहद की धरनी किसे कहते हैं? है मार देते हैं, लठ ले आते हैं, एक दो से लड़ करके मरते मारते हैं। बहुत देखो, बहुत झगड़ा है। इन सब बातों से बच्चों का कोई काम नहीं, बच्चों का तो काम है हमको शिव बाबा को याद करना है। कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना, वो बहुत फुरना लगी रहे कि हम पतित से पावन बन जावे, तमोपदान से सतोपदान बन जावे। तो बच्ची, ये मूल बात है। तो जब ऐसे बाप को याद करेंगी तो वर्षा भी याद जरूर आएगा, बाबा भी अंदर अंदर याद आता है ना, तो बाबा का वर्षा नहीं याद आता होगा। देखो, ये बच्चे लोग बैठे हैं, ये अंदर में बैठे हैं ना, बच्चा है यहाँ बैठे, बाप भी वहाँ घर में बैठा है। अच्छा, बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाप है, इनसे हमको वर्षा मिलने का है, और वो बात भी अंदर में आत्मा जानती है, उनको मुख से तो नहीं बोलना पड़ता है ना, अंदर में तो साफ जानती है, पीछे बाद में मुख में आता है। पहले बात अंदर मन में आती है के मुख में आती है। तो देखो पहले बात मन में आती है, पीछे मुख में चल निकलती है। तो यहाँ तुम बच्चों को अंदर में बात आनी होती है, बस मुख से किसको समझाने के लिए तुमको बोलना पड़ता है। तो बच्ची तुम्हारी खुशी है अतीन्द्रिय सुख की, खुशी में अंदर अंदर वाह वाह चलनी चाहिए। हमको बाबा मिला है, बाबा को याद करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो देखो हम वहां ऐसे बनेंगे ना लक्ष्मी नारायण की तरह, हम स्वर्ग के परिजात जाकर के बनेंगे। 21 जन्म के लिए अभी ऐसा टाइम आने वाला है कि कभी भी हमको दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। अरे 21 जन्म तो क्या, परंतु बाबा कहते हैं कि 40-50 जन्म तुम लोग दुख नहीं भोगते हो। तुम लोग कौन लोग है, तुम लोग माने है जो बाबा के सन्मुख बैठते हैं। अच्छा छत्तीस 37 में बाबा के सन्मुख नहीं थे, थे या नहीं थे है? थे। अच्छा 47 में थे, अरे हाँ 47 में शिव बाबा के सन्मुख थे है? नहीं थे, कोई कहते थे कोई कहते नहीं थे, कोई कहते हमको पिछले जन्म का क्या मालूम। अच्छा 76 से बाबा के सन्मुख थे, अभी हैं, अभी है। फिर महाशिवरात्रि कब होगी, घोर अज्ञान की अंधेरी रात कब होगी, जब सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब जाएगी, बाप कोई नहीं पहचानेगी। दुनिया वाले तो क्या, जो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, उनके लिए घोर अज्ञान की महारात्रि महाशिवरात्रि होगी या नहीं होगी, होगी। तो बाप को पहचानने वालों के लिए होगी है। आज पहचाने और कल भूल जावे, आज निश्चय बुद्धि बने और कल माया निश्चय बुद्धि बनाती रहे, आज बाप के बच्चे बने जन्म लेवे और कल माया मृत्यु कर दे अनिश्चय बुद्धि बना दे। तो जन्म मरण के चक्कर में अमर हुए या मृत्यु लोक के जीने मरने वाले हुए है? जो जीने मरने वाले हैं, मृत्यु लोक में बैठे हैं, वो अमरनाथ बाप के अमर बच्चे हैं। नहीं, फिर सन्मुख हुए है? सन्मुख है या नहीं है? है? अरे तुम लोग 40-50 जन्म सुख में ही रहेंगे, दुख में भासेगा ही नहीं, क्योंकि द्वापर के आदि में भी द्वापर सतु प्रधान होता है, सतु सामान्य स्टेज में होता है। तो बाबा ने बोला है कि जन्म तो क्या 40-50 जन्म तुम लोग दुख नहीं भोगते हो, तुम लोग मृत्युलोक के बच्चे या अमरनाथ के बच्चे? अमरनाथ के बच्चे। माया अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनाती? अरे परसेंटेज में बनाती है या नहीं बनाती है? लो हमारे वहाँ अमरनाथ के बच्चे हमारे बैठे हैं इधर कोने में। तो तुम 40-50 जन्म दुख नहीं भोगते हो, बस थोड़ा थोड़ा पीछे जब आते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत है ना बच्चे, क्योंकि सुख का हिस्सा जास्ती हो, तब तो कहें बाबा ने जो नाटक रचा है भाई सुख इसमें जास्ती है। किसमें किसमें सुख जास्ती है, है? और धर्म पिताओं ने जो धर्म की स्थापना की है उन उन धर्मों को फॉलो करने वालों को उतना सुख नहीं है जितना जितना सुख जो अल्लाह अव्वलीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला कहा जाता है, उसको फॉलो करने वालों के लिए सुख जास्ती है। अगर कहें सुख भी इतना ही है दुख भी इतना ही है तो इसमें फायदा ही क्या हुआ, आधा सुख है आधा दुख है। क्योंकि तुम तो जानते हो कि बरोबर 21 जन्म के बाद हमारे पास धन बहुत होता है, समझा ना? 28/10/1966 की वाणी का 5वां पेज, समझा ना बच्चे? ये तो पीछे आते हैं दूसरे धर्म वाले, इस्लामी लोग वहां द्वापर के आदमी आते हैं। तो सतो प्रधान स्टेज हुई उस समय या रजोतम हुई है, क्या हुई द्वापर युग की कैसी स्टेज कहेंगे? अरे दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो द्वापर हो कलयुग हो, पहले 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 सतो प्रधान। तो इस्लामी लोग जब वहाँ आते हैं द्वापर के आदि में तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होता है, ये तो जब ये बड़े हो गए कौन इस्लामी लोग, लश्कर हो गए करोड़ों हो जावे तब तो वो लड़ाई करे ना, और लड़ाई करने के लिए आवे समझा ना, कोई हिस्ट्री में है, कोई यादगार है? अरे अलेक्जेंडर आया कि नहीं आया? तो देखो वो भी आते हैं, सो भी पीछे, अभी ब्रह्मंडो वालों ने इन्होंने लड़ाई की थी, सो भी देखो कितना बरस हुआ, थोड़ा ही बरस हुआ जो इन्होंने आकर के छीनी है। जब विकार में ये आपस में भी लड़ने लग गए हैं, ये यहाँ का राजा और महाराजा, इन लोगों का आपस में जब इतना लड़ाई झगड़ा होने लगा भारतवासियों में, राजाओं में, तो उन विदेशियों को चांस मिला, वो फिर आए दबंग के। तो ये भाव ही है ड्रामा की, नहीं तो उसके पहले तो यहाँ बहुत सुख शांति थी, कोई भी चढ़ाई आदि नहीं करते थे। सबको, राजाओं को अपना अपना, बड़ी बड़ी राजाई थी ना, तो बड़े खुश थे, इतना दुख नहीं था। धन अन्न बाबा अनुभवी तो है ना, अन्न हमने बेचा है, 10 आना मन बाजरी, 12 आना मन ये ज्वार, 11 आने भी कनक भी होगी, क्योंकि वहां कनक नहीं खाते थे उस समय। कब है बाबा ने जब कनक बाजरी बेची, तो उस समय वहां सिंध हैदराबाद में क्या नहीं खाते थे? कनक नहीं खा, कनक किसे कहा जाता, मैदा। तो कनक भी होगी तो ना, परंतु खाते नहीं थे जास्ती, पर होती क्यों नहीं थी? चलो बहुत करके रुपए की होगी, रुपए मन क्या समझते हो, इसके आगे क्या सस्ताई होगी, तब हिसाब तो करना चाहिए ना बच्चे। जब होंगे ही हम थोड़े वहां सतयुग में, तो फिर वहां हमको अन्न की परवाह होगी नहीं? एवरीथिंग नई चीज होगी, कनक जैसी फर्स्ट क्लास चीज होगी, पीछे चीजें सस्ती जाती हैं, कनक कितनी अच्छी होगी, सब कुछ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास। तो देखो उस स्वर्ग में तुम बच्चे चलते हो, अभी तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, बाकी स्वर्गवासी बन रहे हैं तो जरूर स्वर्ग को याद करना पड़े। कोई का नया मकान बनता है तो नए मकान में बुद्धि जाती है ना, परंतु पहले पहले स्वर्ग में तो नहीं जाना है ना, पहले कहाँ जा देंगे, पहले तो घर में जा देंगे। घर जा करके थोड़ा थकान दूर करके फिर पिछाड़ी में घर तो जाना है ना, तो पीछे तुमको क्या मिलेगा? घर जाएंगे तब जब आएंगे इस दुनिया में, तो कैसी दुनिया में आएंगे? है ये पुरानी दुनिया होगी या नई दुनिया होगी? पीछे हमारा शरीर भी ये जो पांच तत्वों का है ना, तमो प्रधान, बिल्कुल ही तमो प्रधान अर्थात पतित शरीर है, ऐसे समझो। ये पतित शरीर तो देखो आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित। सोना भाई पक्का सोना तो जरूर, जेवर भी पक्का। अच्छा सोने में खाद पड़ेगी तो जेवर भी है खाद वाला बनेगा, जेवर माने शरीर। तो अभी तमो प्रधान आत्मा है तो तुम्हारा शरीर भी है तमो प्रधान है, शरीर भी ऐसा ही है। रोगी देखो, और वहां कभी रोगी शरीर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सतो प्रधान तत्वों का बनता है। तो ये समझ की बात है ना बच्चों की, क्या करें, यहां बच्चों को समझाते रहते हैं, पीछे वहां घर जाकर के सब भूल जाते हैं। कितनी बातें अच्छी यहाँ, कितना बाबा खुश करते हैं, समझाए समझाए करके खुश करते रहते हैं, भर भर करके सागर बादलों को बहुत गोद में ले आते हैं जाते हैं। फिर वो बादल जब जाते हैं वहां, कोई बरसते हैं कोई नहीं बरसते हैं, कोई बरसने से पहले ही सागर में डांबाडोल हो जाते हैं। नहीं तो यहां से जो भी जाते हैं बहुत करके बहुत खुश होकर के जाते हैं, बोलते हैं मधुबन में तो मधुसूदन है, बाबा की जो मुरली बजती है एकदम रिफ्रेश कर देती है नई नई पॉइंट से। हमको पूरा ही भर देती है, खुशी का पारा चढ़ा रहते हैं। तो खुशी के मारे कोई डांस करते हैं ना, बाकी ये डांस वांस तो तुमको वहां करना है, कहां है, है नई दुनिया में, यहां तुमको ट्रायल कराई जाती है ध्यान में भेज करके। तुम लोग वहां डांस आदि करते हो, अभी वो डांस आदि सब बंद कर दिया है, नहीं तो आगे ये कंबल बनाना है भाई, चलो बाजा बजाओ और उठेगा डांस करेगा। पीछे झट डांस कर लेते थे, पीछे जब मनुष्यों ने इसको जादू समझ लिया तो बंद कर दिया। बोला ये जादू नहीं है तो क्या है भला, समझा ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में जब सिर कटे तभी उनको साक्षात्कार होता था। एक मीरा थी, एक नारद था, एक फलाना था, उनको साक्षात्कार होते थे। बड़ी नवदा भक्ति करने से वो साक्षात्कार हो जाते था। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस सो करके उठते हैं, डांस करने लग पड़ते हैं, किसको देखते भी नहीं, कृष्ण की भी भक्ति नहीं करते। जो भाई कहें अच्छा ये तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो देखो इनको साक्षात्कार होते हैं। मीरा की तरह साक्षात्कार में झट बैकुंठ से चली जाती थी। परंतु अभी कुछ भी याद नहीं, सो जाते हैं, उठते हैं तो डांस करने लग पड़ते हैं। अरे ये क्या है। तो इसलिए बाबा ने ये साथ बंद कर दिया। 28-66 की वाणी का छठा पेज, नहीं तो आज में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। अभी क्यों बंद कर दिया? अरे कोई कारण? कारण तो होगा ना। इस साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग में किसको होते थे? भक्तों को होते थे, या बाबा को जो बच्चे बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी तू आत्मा, उनको होते थे? भक्तों तो होते थे। तो ये फाउंडेशन भक्त आत्माओं के द्वारा पड़ता है या ज्ञानी आत्माओं के द्वारा पड़ता है? भक्त आत्माओं के द्वारा ये फाउंडेशन पड़ा, फिर बाबा ने बंद करवाया। तो क्या करें, वो जो गाया जाता है ना कि एक टंगे के गांव में दो टंगे वाले को भी लंगड़ा समझेंगे, तो बाप को भी ऐसे ही देखो, ऐसे ही मनुष्य ने वो छिपाए देना होता है, क्योंकि देखते हैं कि भगवान ही कितने बन बैठे हैं यहाँ। कोई अपन को विष्णु कहलाते हैं, हम विष्णु भगवान हैं, कोई लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, मथुरा में एक निकला ब्रह्मा कुमार, किसी जज की लड़की ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली, बस नशा चढ़ गया, लक्ष्मी नारायण का सत्संग होने लगा, पीले कपड़े पहन लिए, मुकुट बांध लिए, मथुरा में बड़ा सत्संग चला, दो दो बसें भर करके माउंट आबू पहुंच गए, माउंट आबू वालों ने भी रिसीव कर लिया ब्रह्मा कुमार कुमारों को। तो देखो कोई विष्णु कहलाते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, कोई राम सीता बन करके बैठ जाते हैं। तो कभी दूर में निकला, 7-8 दिन का कोर्स किया कंपनी, विदुर ने जाके आवाज कर दी कि मैं 9 दिन एकांत में भक्ति कर वो तपस्या करके आया और तपस्या करने के बाद मेरे को साक्षात्कार हो गया। हम पति पत्नी दोनों राम सीता है, राम सीता बन के बैठ गई। तो देखो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता एकदम डबल, वो है वहां सीता और राम अलग अलग। इन्होंने तो दोनों नाम अपने ऊपर रखवा लिए, लक्ष्मी नारायण ये नाम एक मनुष्य का। अभी कहा वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बैकुंठ के, कहा ये लक्ष्मी नारायण नरकवासी। तो ऐसा नाम थोड़े ही रखना चाहिए वास्तव में। वहां लक्ष्मी नारायण अलग अलग, कहां ये नारायण नाम उनका। तो बोलते हैं देखो इनको कोई पता भी नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। ये नारायण कहां, वो नारायण स्वर्ग का मालिक, और कहां ये नरकवासी नारायण। तो यहां सभी हैं ही नरकवासी, सब साधु संत महात्मा सब नरकवासी। इसलिए तो दिखलाते हैं ना सीढ़ी में नरकवासी और वो स्वर्गवासी। ये नरक ऐसा क्लियर है यहां। तो बच्चों को इतना समझाते हैं, तो जब चित्र बनाते हैं तो याद नहीं पड़ती है, कोई उनको मदद नहीं एक दो को करती है, सब कोई अपने धंधे धोरी में यहाँ वहां भटकते फिरते हैं, सर्विस में अटेंशन ही नहीं देते। नहीं तो अटेंशन बहुत देना चाहिए। ये चित्र बन रहे हैं, है? तो बाबा ने पहले की बात सुनाई 66 की, अब ये मुरली हमको क्यों सुनाई जा रही है? अरे अब ये चित्र है, चित्रों पर अटेंशन देने की बात है या नहीं है? अरे क्यों है? पहले जड़ चित्र बनते थे, अभी बाबा बोलते हैं कि चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस राक्षसियों के चेहरे भी तैयार हो रहे, कोई देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे, ये चित्र बन रहे हैं रात को सुबह को। तो अभी अपन को कौन सा चित्र बनाना चाहिए है, राक्षस राक्षसी का या देवी देवता का या भगवान भगवती का, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो देखो जट जाकर के चित्र बनते हैं, उनको जा करके राय देवे या चिट्ठी लिख करके भेजे, बाबा ऐसे ऐसे चित्र में ये बनाने से मेरी राय से ये अच्छा होगा। तो भले सब कोई लिख देवे ये बनाने से ये अच्छा होगा, वो बनाने से वो अच्छा होगा, तो बताती जाए और बनाती जाए। ऐसे भी करते हैं कोई कोई, कोई नहीं करते हैं। ये सीढ़ी भी तो इन बच्चों ने बनाई है, अपनी बुद्धि से। बाबा ने नहीं कहा था कभी सीढ़ी बनाओ, तो इन बच्चों ने सीढ़ी बनाई, बाबा खुश हुआ। ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, ये सीढ़ी है, अखबार में एक में लिखा, ये सीढ़ी कहाँ से आई, इन्होंने ये सीढ़ी कहाँ से निकाली। वो गीता है उन परमानंद की, उसमें सीढ़ी लगी हुई है, उनमें से इन्होंने आइडिया लिया होगा। तो वो तो पढ़ते रहते हैं ना, किताब निकालते हैं, फलाना पढ़ते हैं, नहीं तो है तो गीता अपने पास भी, परंतु उस गीता पर किसका ध्यान नहीं गया। वहां किसका ध्यान गया, सीढ़ी पर। ये सीढ़ी तो 84 जन्म की बहुत अच्छी बनाई, उस परमानंद ने कोई 84 जन्म की सीढ़ी नहीं निकाली थी, उन्होंने तो ऐसे ही, वो क्या जाने मुर्दा सीढ़ी बना। तो इनसे सीढ़ी उन्होंने बनाई थी, सीढ़ी बनाई थी, ये चीज अच्छी है, 84 जन्म की सीढ़ी, तो इनको इम्प्रूवमेंट करते रहे। तो बच्चों को भी दे करके इम्प्रूवमेंट करें, तो ऐसे करते करते बच्चों की बुद्धि खुलती जाए हर एक चित्र में। भाई हो, ये भी चित्र चाहिए, ये जो चित्र है अभी देखो, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ये दिख लाया है, सचुग से फलाने समय में फलाने समय तक। अच्छा, अब सीताराम का भी चित्र दिखलाया है, भाई फलाने समय से फलाने समय तक। अच्छा, फिर द्वापर से लेकर के उनका भी चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि उनमें डबल ताज है। किनका चित्र बनाना चाहिए है, जिनमें डबल ताज है, श्री लक्ष्मी नारायण को डबल ताज है, उनमें फिर संगल ताज। समझे, किसमें सिंगल ताज, जो द्वापर के राजाएं हुए उनको सिंगल ताज, विकारी रह गए, द्वापर से विकारी रह जाए, भक्ति करते हैं, पटका पड़ा है, भक्ति करते हैं, ताज लगाया है, ऐसे बनाया है सीढ़ी में एक चित्र है, तो पीछे इस समय में वो भक्ति करते हैं। पीछे मैंने कब, कलयुग के राजा हैं, ताजबाज भी नहीं है, एकदम टोपी है, समझा ना, तो वो लगा देना चाहिए। देखो अभी कलयुग के राजाओं का वो ताज भी चला गया और टोपी भी चली गई, तो बच्चों को समझाने में बहुत सहज हो जावे कि भाई देखो कैसे सृष्टि 84 जन्मों में कैसे उतरती जाती, कला होती जाती है, ये है उतरती कला। देखो कलाएं उतरती जाती है ना, चढ़ती कला उतरती कला, अभी इस समय में जरूर सब सबकी चढ़ती कला होनी चाहिए, यानी चढ़ती कला हो जाएगी तो सबकी चढ़ती कला हो जाएगी, कोई की स्वर्ग में चढ़ती कला हो जाएगी, कोई की शांति धाम में चढ़ती कला हो जाएगी। 28/10/1966 की वाणी का 7वां दिन। अभी ये चढ़ती कला कौन करने वाला है, और ये उतरती कला कौन करने वाला है, तो देखो बाप आकर सबकी चढ़ती कला कर देते हैं ना? और उतरती कला कौन करते हैं? है जो ये धर्म पिता है गुरु बन के बैठते हैं, कोई भी धर्म पिता है देहधारी, वो क्या करते हैं? उतरती कला करते हैं। तो देखो जब बाप आते हैं तो सब की चढ़ती कला होनी चाहिए, सबको सुख देते हैं, और कहते भी हैं, सभी कहते हैं बाप आकर के सबकी चढ़ती कला बनाते हैं, कहते हैं हे बाबा दुख हरो और सुख दो, बस यही पुकारते रहते हैं। ये किसी को मालूम तो है नहीं कि सुख कहाँ मिल सकता है और दुख कहाँ कैसे हट सकता है, ये सन्यासी तो जानते ही नहीं है, ये सुख को तो जानते ही नहीं, वो तो शांति को जानते हैं। तो जो सिर्फ शांति को जानते हैं वो तो गीता सुना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान से क्या होता है, है? पहले गीता ज्ञान आता है, फिर भागवत होती है, और जब भागवत होती है भागते हैं भगवान के पीछे तो झगड़े टंटे शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं महाभारत युद्ध हो जाता है, इसे स्वर्ग के गेट खोलते। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। तो भगवान आकर के ये महाभारत युद्ध कराते हैं। तो पुकारते रहते हैं। इन बातों की ये सन्यासी नहीं जानते हैं। वो कभी गीता नहीं सुना सकते। तो ये सब बातें अभी विचार की हुई। क्या कि सन्यासी क्या नहीं कर सकते, गीता नहीं सुना सकते। बड़े से बड़े सन्यासी कौन है, कहाँ हैं? है? है? कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ है? माउंट आबू में। वो गीता नहीं सुना सकते। अरे यज्ञ के आदि में तो गीता का ही ज्ञान सुनाते थे, गीता के ही श्लोकों को क्लैरिफाई करके बताते थे। कौन है? बाप। और अभी ये सन्यासी क्या नहीं कर सकते, गीता का ज्ञान नहीं सुना सकते। और तुम बच्चे हैं? गीता को, गीता के श्लोकों को क्लैरिफिकेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते? दे सकते हो। तो देखो ये सारी विचार की बातें हैं। जबकि गीता में है ही सुखदाम का वर्षा बाप देते हैं और साथ में शांति दान भी देते हैं। अब ये सन्यासी मुर्दे कभी भी राजयोग सिखलाई नहीं सकते, क्योंकि ये मुर्दे निवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये घरगाह छोड़ने वाले हैं और घरगाह छोड़ाने वाले हैं। है? बाबा ने क्या कहा था, अंदर वाले रह जा देंगे, बाहर वाले ले जा देंगे। तो बाहर वाले गृहस्थी हैं सब। जो गीता का ज्ञान ले करके बैठ गए ये सन्यासी हैं। एडवांस में क्या है, है? सब गृहस्थी है और बाप भी गृहस्थी है। तो वो सन्यासी साहब ने निवृत्ति मार्ग वाले, अभी उनको कोई भी गीता वगैरह पढ़ने का हक ही नहीं है। वो तो तोते के मुआफिक है, जैसे पंडित पढ़ते हैं ना। पंडित क्या करते हैं, शास्त्र वगैरह, गीता रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, भागवत। वैसे तुम भी पढ़ सकते हो। अच्छा वो क्या सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं ना। वो गीता तो तुम भी पढ़ सकते हो। जो अर्थ लिखा है वो भी बिचारे देखो, जो पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, मनुष्य गुरुओं के द्वारा अर्थ लिखा है वो भी बहुतों को सिखला देते हैं। श्लोक बोला और बैठ करके एक बच्ची ने सुनाया। अच्छा ये तो बस देखो, ये तो महात्मा बन गई। अरे लाखों करोड़ों जाकर के पढ़ते हैं और लाखों पैसा छोड़ करके जाते हैं। अच्छा वो पढ़ना, वो पढ़ना अच्छा या बीए एलएलबी और एमए एमए करना वो अच्छा बताओ? सबसे अच्छा तो वो है ना। बस गीता एक कंठ की और उनका बैठ करके व्याख्यान चल, चलो बरस लगे, दो बरस लगे, तीन बरस लगे, उस पढ़ाई में तो 5 वर्ष से 20 वर्ष 15 वर्ष लग जाता है। इसमें तो बहुत बहुत बीच की बच्ची हो भी सेंसिबल, हाँ इन जैसी इतनी सेंसिबल कोई बच्चे की तरफ इशारा किया, इनको शुरू कराए दो या इन जैसी शुरू कराए दो कि तुम ये संस्कृत में सीखो, तो संस्कृत में तो वो सीख ही जाएगी, संस्कृत गीता तो वो सीख ही जाएगी ना। याद करो तो वो भी तो है ना, वो श्लोक याद है। बस बात मत पूछो, लश्कर जाते हैं उनके ऊपर, एक थोड़ी खूबसूरत हो और ये गीता का संस्कृत में हो और थोड़ा बहुत अर्थ भी समझा दे, बस ये रही सभी तुम्हारी कमाई। जज बैरिस्टर घर को याद करेगी, वो तो इतना कमा ही न सके, कौन जज बैरिस्टर, वो इतनी ज्यादा कमाई करती है, कौन गीता सुनाने वाली बच्ची। ये भी तुम्हारी कमाई, जट हमको मत्था भी आकर के कोई देखते रहते हैं, कितना मान हो जाता है उनका। अच्छा जाओ गुरु ग्रंथ का जाकर के बैठ करके जप साहब और ये गुरु ग्रंथ है ये थोड़ा सीख करके एक टिकाना लेकर के मंदिर में वो रख दो एक ग्रंथ और अच्छी तरह से भबका करके दिखा देगी, सभी आएंगे और बैठ करके ग्रंथ के थोड़े वचन सुनेंगे। थोड़ा बो बनाया, माथा टेकते रहेंगे, पैसा छोड़ते रहेंगे, बड़ी अच्छी कमाई का धंधा निकल जाता है, ढेर के ढेर आते हैं, तभी तो इतने धंधे निकले हुए हैं ना। ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये ठिकाने, क्योंकि कमाई का रास्ता रहता है। अच्छा और भी कोई को तकलीफ हो भी देखते हैं, बस अभी तो हम तंग हो गए, अभी हमारा दिवाला भी मारने का समय आ गया। अभी मैं छू नहीं सकता हूं। अच्छा चलो जा करके संन्यास ले लेता हूं, मत्था मोड़ाया और कफनी पहनी और जाकर के सन्यासी बन गए, बस सब चिंताएं खत्म कर दी एकदम। कैसे है रामायण में लिख दिया नार मुई घर संपत्ति नासी, दिवाला निकल गए मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। ये सन्यासी और ये ढेर ऐसे सन्यासी बनते रहते हैं, जब तंग हो जाते हैं ना घर से, अरे छोड़ो इनको, एकदम छोड़ो, कफनी पहनो, मत्था मुड़ाया, जाकर के सन्यासियों के संग में पड़ा, उनके संग में कुछ न कुछ सीख जाते हैं, मंत्र जंत धूल छाई, और वो बैठ करके भीख मांगते हैं, बड़े मौज में चक्कर लगाते रहते हैं, जहां चाहिए वहां चले जावे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, ट्रेन में ही ऐसे ही बैठ जावे बिना टिकट के तो भी चला जाएगा। उनको भी वो सन्यासियों को कुछ न कुछ है, वो ट्रेन वाला भी उठा करके रख देगा, लो अगर उतार दिया दूसरी ट्रेन आ जाएगी, उसमें फिर बैठ करके चला जाएगा। अलमस्त घूमते फिरते रहते हैं, देखो उनको क्या दुख है, भीख मांगते रहते हैं फिरते रहते हैं, उनका कोई धनी धोरी तो है ही नहीं, अब इनको तुम्हारा कितना दुख लगता है, ऐसे तो बाबा देखते तो रहते हैं ना। साफ देखते रहते हैं। 28:10-66 की वाणी का 8वां पेज। तो देखो ये सन्यासी ऐसे बहुत करते रहते हैं एकदम। तो देखो वहां उस दुनिया में ये क्या लगा पड़ा है, अभी वो तो बातें हैं, सब ठगी की बातें हैं और शैतानी की बातें हैं, और यहां तो बाप आए हैं तो बैठ करके कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, न मत्था मुड़ाने की बात न कुछ भी बात, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा तो जानते हो ना, तुम आत्मा हो ना, और तुम आत्माएं आत्मलोक परमधाम के रहने वाले हो ना, तुम कोई यहां नरक की दुनिया के रहने वाले तो नहीं हो ना, तो वहां से तुम यहां आ जाते हो इस दुनिया में, तो ये जानते हो कि बरोबर ये सृष्टि जो बढ़ती जाती है, दुनिया में ये जो सृष्टि बढ़ रही है मनुष्यों की, जानवरों की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, वो आत्माएं कहां से आती होंगी, है परमधाम से आती होंगी, यहां इस दुनिया की ये आत्माएं रहने वाली तो नहीं है ना, पहले इतने कीड़े मकोड़े होते थे, ऐसे दुख देने वाले जंतु जानवर होते थे, नहीं होते थे। तो देखो सब आत्माएं परमधाम में रहने वाली हैं, वहां से आती। ओम शांति।